بلند ہے طلبائے امامیہ
کا علم۔ اس کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بلا تاخیر ملتمس ہوں سربراہ امت واحدہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور کانفرنس کے شرکا سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج کی اس نورانی اور بابرکت کانفرنس کا عنوان تعمیر وطن ہے۔ جب آپ اس عنوان پر غور کرتے ہیں تو تعمیر کے لیے آپ کو جو جگہ چاہیے اس کی دو صورتیں متصور ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خالی زمین ہو اور آپ اپنی مرضی سے وہاں پر تعمیر کریں، دوسرا یہ کہ نہیں، پہلے سے کچھ موجود ہو اور اس کی دوبارہ تعمیر کریں اسی شکل میں، اور ایک تیسری صورت ہے کہ اس کو آپ منہدم کر دیں، ختم کر دیں اور نئے سرے سے اپنے خوابوں کا محل وہاں پر تعمیر کریں۔ جب ہم پاکستان کے معروضی صورتحال اور چیلنجز کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے سامنے اٹھتے ہیں کہ ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیسے اس ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ وہ جو چیلنجز ہیں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، وہ چیلنجز صرف پاکستان کو درپیش نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کو درپیش ہیں، اور بالخصوص تھرڈ ورلڈ کو، خصوصاً مسلمان ممالک کو، خصوصی طور پر سب سے زیادہ فوکسڈ مسلمان ممالک ہیں۔ اس وقت یہ جو دنیا میں حاکم نظام ہے جس کو آپ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، یک قطبی نظام، اس نظام کی موجودگی میں اگر آپ اپنے وطن کی تعمیر کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو پتھر اٹھانے پڑیں گے وہ پتھر بہت بھاری ہیں، کوئی معمولی پتھر نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو نہ اٹھایا جائے، لیکن اس کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے، جس جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے قوم کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس راہ میں جو ہرڈلز، جو رکاوٹیں، جو چیلنجز، جو بڑے بڑے مسائل اور مشکلات اپنا منہ کھولے ہمارے سامنے مشکلات کھڑی ہیں، ان کا ادراک سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام میں پاکستان بھی اسی سرمایہ دارانہ نظام کے تحت چلنے والا ایک ملک ہے جس کی اس وقت بھی پالیسیز اسی سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پالیسی ہو۔ ہاں، خطے کی بعض ناگزیر مشکلات اور مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی اس سرمایہ دارانہ نظام سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو، یا بعض دیگر مسائل، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس سرمایہ دارانہ نظام سے جب تک ملک نکلتا نہیں ہے، اس نظام میں رہتے ہوئے آپ کسی ایسے آزاد ملک کا خواب شرمندیے تعبیر ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، میک اپ کیا جا سکتا ہے، چہرے تبدیل کیے جا سکتے ہیں، 19-20 کے فرق کے ساتھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن وہ جو جوہری تبدیلی ہے اس کے لیے خود اس نظام کی تبدیلی ضروری ہے۔ اس وقت ذرا دیکھیے، ایران میں انقلاب آیا، گزشتہ 43 سالوں سے وہ انقلاب نبرد آزما ہے، جبکہ قوم ایک ہے، زبان ان کی ایک ہے، مذہب ان کا ایک ہے، اقتصادی اور معیشت کے حوالے سے वो बहुत ज्यादा ताकतवर है दीगर खित्ते के ममालिक की निस्बत, वसाइल के लिहाज से वहां पर बाकी ममालिक की निस्बत वसाइल में कोई कमी नहीं है और यकसुई है, लीडरशिप का इत्तेहाद है और बहुत सारी ऐसी खुसूसियात है जो उस कौम में मौजूद है। लेकिन उस इनकलाब के आने के बाद आप उनके सामने खड़े होने वाली मुश्किलात को अगर देखें तो कोई और कौम होती तो शायद एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल में उनका सारा निजाम बैठ चुका होता। लेकिन वो कौम अगर खड़ी रही है तो इन खास खुसूसियात की वजह से जो उस कौम में है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक उस तरह की खुसूसियात हम पाकिस्तान के अंदर पैदा करने में कामयाब नहीं होते, कोई बहुत बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं है। आज का जो निजाम है, आज जो निजाम हाकिम है, उस निजाम में जरा गौर कीजिए। आपकी बैंकारी का निजाम उसी आलमी इस्तेमारी निजाम के ताबे है। आपकी फौजी असलहे की असलहे का और दिफा का सारा निजाम उसी से रिलेटेड है। इस वक्त पाकिस्तान अगरचे एटमी मुल्क है लेकिन उस एटम बम को भी जिस तरह के खतरात दरपेश है वो कोई मामूली खतरात नहीं है। लेकिन उसके अलावा जितना भी असलहा पाकिस्तान ने वेस्ट से अपने दिफा के लिए खरीदा हुआ है वो उनकी इजाजत के बगैर चलाने की सकत भी हमें नहीं आए। बहुत सारे इस तरह के मसाइल, इसी तरह से बाकी तमाम मसाइल जिनका ताल्लुक आपकी आपकी मईशत से है, जिनका ताल्लुक आपके निजामे तालीम से है, जिनका ताल्लुक आपके कल्चर से है, जिनका ताल्लुक आपकी कानून साजी के इदारों से है, जिनका ताल्लुक आपके मीडिया से है, ये तमाम की तमाम चीजें किसी कौम के बनाने में, उसकी फिक्री तामीर में, उसके अंदर कौमियत के जज्बात, एहसासात, मारिफत और तवानाई पैदा करने में बड़ा ही बुनियादी रोल अदा करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों पर जो हाकिमियत मौजूद है इस वक्त वो वेस्ट की है। हमारे पास जो सरमाया है वो क्या है जो उसके मुकाबले में सबसे ज्यादा ताकतवर है? वो है हमारा दीन। ये सारे मसाइल उनके हाथ में है लेकिन जो हमारे पास है वो हमारा दीन है, हमारा अकीदा है। अकीदे तौहीद है, नबुवत का अकीदा है, दीन की वो तालीमात जो हमें जसद वाहिद और उम्मत वाहिदा बनाने में हमें रहनुमाई भी फराहम करती है और हमें बताती भी है कि किस तरह से हमने एक उम्मत बनना है। लेकिन इसी हमारे पास जो सरमाया है, यही सरमाया, इसी सरमाए को तोड़ने के लिए, मुजमहल करने के लिए 70 साल अगर मैं न कहूं तो गुज़श्ता 40-42 सालों से पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो कोशिशें हुई है वो इस सरमाए को भी हमसे छीनने की कोशिशें हैं, जिसके नतीजे में आज भी मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ फिरकों के लोग एक दूसरे से नबर्द आजमाए। मैं कल परसों सराजुल हक साहब के साथ एक निशस्त थी, मैंने उनसे ये सवाल किया कि 70 साल गुजर गए आप अपना वोट बैंक क्यों नहीं बना सके, आप कौम क्यों नहीं बना सके, आपके मुकाबले में जो बाद में आए वो क्यों बना सके। जवाब कोई नहीं था, जवाब वही था जो मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे दीनी इदारे और वो मराकज जिनका काम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें एक जसद और एक बदन की सूरत में ढालना था, उन इदारों ने खुद हमें शुऊरी तौर पर अपने जाती और छोटे छोटे मफादात के लिए तकसीम करने के नतीजे में हमें दुकानों में तो बांट दिया लेकिन कौम बनने कभी भी नहीं दिया। और इसी का फायदा उन सरमायादाराना निजाम पर हाकिम कुव्वतों को हुआ जो आज हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं। आप जरा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें। जो इस वक्त तहरीक चल रही है, एक मूवमेंट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मजबूरी तौर पर बात कर रहा हूं, वो मुल्क जहां पर आपके दारुल खिलाफा की पुलिस का सारा फंड अमरीकी देते हो, वो मुल्क जहां पर आपके सबसे बड़े सूबे के यानी पंजाब के एसपी से ऊपर के रैंक के तमाम ऑफिसर्स की तरबियत बाकायदा आपके मुआहिदे में शामिल हो कि वो अमरीकी करेंगे। जिस मुल्क के अंदर, मैं फौज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब मैं खुद जनरल हमीद गुल से यह सुन चुका हूं अपने इन्हीं कानों से कि जिस मुल्क के अंदर ब्रिगेडियर्स के बाद तरक्कियों के लिए जिन जिन सलाहियतों की जरूरत है उन सलाहियतों के साथ एक और इजाजत भी चाहिए और वो वाशिंगटन की इजाजत चाहिए, उस मुल्क के अंदर आप सोचें तब्दीली के लिए कितने बड़े और कितने गहरे इकदाम की जरूरत हो सकती है। जहां पर आपकी मईशत उनके हाथ में है और आपका बच्चा बच्चा लाखों का मकरूज होकर पैदा होता है, जहां पर आपकी तालीम का सारा निजाम उनके हाथ में है। आप इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से आए हैं, मुझे उन जवानों से कहने की जरूरत नहीं है जो यूनिवर्सिटीज से आए हैं कि यूनिवर्सिटीज में इस वक्त मगरबी कल्चर को हमारे इस मुआशरे के अंदर हावी करने के लिए जिस जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और उसके नतीजे में हमारा आम जवान जिस तरह से उस कल्चर में ढलता चला जा रहा है, ये आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। जो आपका निजाम है उसमें आपके तालीमी इदारे ही आपको शऊर देते हैं, लेकिन उन्हीं तालीमी इदारों के अंदर जो आपको ढालने के लिए सांचा बनाया गया है वो मगरिब की गुलामी का अगर हो और फिर उसके साथ उन ममालिक के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात दिलाकर आपके क्रीम को ले जाकर बदन उनका पाकिस्तानी रहने दिया जाए और जहन उनका मगरबी बना दिया जाए और उन्हीं को लाकर इस मुल्क में आप और हम पर मुसल्लत किया जाए, तो फिर वो पलटकर आने वाला पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जब यहां पर कानून साजी करेगा तो वो कानून साजी आपके इस मुल्क के अंदर लोगों की जहनी और फिक्री और कल्बी जरूरतों के तहत नहीं करेगा बल्कि अपने मगरबी उन मुरब्बियों की ख्वाहिश के मुताबिक करेगा। और यही कुछ इस वक्त हो रहा है। आप इस वक्त वर्ल्ड बैंक से हम बहुत ज्यादा कर्जा ले रहे हैं और रोज ये मुश्किलात हमारे सामने, कोई भी मुल्क आए, वो इमरान खान की हुकूमत हो, वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, दौड़ इसमें लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा कर्जा लेकर इस मुल्क में आता है। लेकिन जो कर्जा आता है ये बात कोई नहीं बताता कि जब कर्जा आता है तो कर्जे के साथ उनका कल्चर लाजमी तौर पर आता है, ये कोई नहीं बताता। ये जरूर बताते हैं कि भाई हम पर कर्जा चढ़ गया डॉलर के महंगा होने के नतीजे में, हम इतने ज्यादा मकरूज हो गए, ये जरूर बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस कर्जे की आमद के नतीजे में आपके बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आपके तालीमी इदारों से लेकर कल्चरल इदारों तक, आपकी सहाफती मैदान से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया तक, आपके मुल्क में बनने वाले कवानीन के मरकज, आपकी असेंबलियों तक, उनकी जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है, ये कोई नहीं बताता। ये कोई नहीं बताता कि जब आप फर्ज करें $1 अरब कर्जा लेते हैं तो उस $1 अरब की वापसी की जितनी भी लंबी चौड़ी शरायत हो उन शरायत के साथ आपको किन किन ऐसी चीजों का पाबंद किया जाता है जिसके नतीजे में आपका मुल्क हर गुजरते दिन के साथ खोखले से खोखला तर होता चला जाए और उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, ये कोई नहीं बताता। यहां पर कानून साजी होती है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। अगर 2 साल पहले आप देखें इसी पंजाब असेंबली में कानून साजी हुई औरत के हक के हवाले से, यहां पर कानून साजी हुई, कानून साजी का रोल जिन्होंने अदा किया वो नून लीग के तकरीबन 120 मेंबर्स थे, उनमें से भी 110 खवातीन थी, खवातीन के हकूक के नाम पर। उसकी अगर आप उस जमाने में अगर आपको याद हो, किसी ने गौर किया हो, यहां तक बहस थी कि इस कानून के मुताबिक औरत और मर्द के हुकूक का तायुन किया जाए, और औरत को वही आजादी मिले जो मर्द को हासिल है। औरत रात घर में बाहर घर से बाहर गुजारना चाहे तो उसको आजादी हो, लेकिन अगर मर्द औरत की इजाजत के बगैर कहीं पर रहना चाहे तो औरत उसको कंट्रोल कर सके, और अगर उनके दरमियान तनाजा हो अदालत औरत के हक में फैसला दे दे तो उसके बाद अगर फिर भी मर्द उस औरत के हक को पामाल करे और उसकी इजाजत के बगैर जाए तो फिर औरत को यह हक हासिल हो कि वो मर्द के हाथों में वो इलेक्ट्रॉनिक कड़ा पहना दे, जिसके नतीजे में उसको यह मालूम हो कि उसका शोहर कहां है। लेकिन औरत आजाद है, यह कानून साजी किसने करवाई थी? क्या यह हमारी जरूरत थी, इस माशरे की जरूरत थी? ये जो अभी हम बाज़ुकात तल्ख चीजें हैं, इन चीजों में ना इमरान खान ना नवाज शरीफ ना जरदारी, इनमें कोई फर्क नहीं है। यानी ऐसा ना समझे कि चंद नारों की वजह से कोई फरिश्ता हो जाए और कोई पूरा शैतान, नहीं। जो जहां पर है उसको उसी तरह से देखना चाहिए। ये जो ट्रांसजेंडर का कानून बना 2018 में, तो उसके सबसे बड़े डिफेंडर पीटीआई के लोग थे। पीटीआई के दौर में असेंबली के अंदर एक हिंदू मेंबर ने, ये जो डॉक्टर रमेश कुमार है, उसने मुसवदा पेश किया कि जो कानून बनाया जाए कि शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसलिए कि शराब इस्लाम में भी हराम है, मसीहियत में भी हराम है, हिंदुइज्म में भी हराम है। जब तमाम अदियान के मुताबिक शराब हराम है तो आप इसको ममनू कर दें, इसकी खरीद और फरोख पर पाबंदी लगा दें। हिंदू मेंबर ये मुसवदा लेकर आता है असेंबली में, और इन तीनों पार्टियों के मेंबर्स और सबसे आगे आगे मौजूदा हुकूमत नहीं साबिका हुकूमत के बाद मेंबर सीना तान कर आते हैं कि कौन माई का लाल ऐसा है जो इस कानून को पास करा सके। हम सब इकट्ठे हैं और यह कानून कभी भी पास नहीं होगा। आप ये याद रखें कि उस सिस्टम में जब तक हैं तो फिर नीचे हुकूमतों के चेहरे बदलने से कोई बहुत बड़ा फर्क पैदा नहीं होता। हां, बास चीजों में क्यों नहीं, बास नारे बहुत अच्छे हैं और उनको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम उसके जरिए से पाक हो जाए। ऐसा नहीं है। हमें इस तरह की किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। वो जो कानून बना, बाद में तहकीक की, पता चला जो पंजाब असेंबली का कानून था औरत और मर्द के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए था वर्ल्ड बैंक से। इन्होंने जब उनसे डिमांड की तो उन्होंने कहा आप ये कानून पास करवा दें। यही शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, कानून पास हो गया, इनको कर्जा मिल गया। ये याद रखें कि इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उनका ताल्लुक किसी खास पार्टी से नहीं है, पूरे निजाम से है। इसलिए ये निजाम तब तक उसी तरह से रहेगा जब तक अवाम के अंदर इस निजाम के हवाले से यह शऊर पैदा ना हो कि जब तक हमारे मुल्क का निजाम सरमायेदारों के जेरे नगी है और उनके जूतों के नीचे पिस्ता चला जाता है, उस वक्त तक कोई बहुत बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। यह बात हमारे जहन नशीन होनी चाहिए। इसलिए एक इस्लामी, एक दीनी तालिब इल्म की हैसियत से भी और पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से भी जो इस वक्त अहम तरीन चीज है वो ये है कि कोई भी फर्द इस मुल्क में निजाम की इस्लाह के हवाले से कोई छोटा भी कदम उठाता है और वो वाकई निजाम की इस्लाह है तो वो वाकई तामीर है, लेकिन उससे आप बहुत बड़ी तवक्कोआत वाबस्ता ना करें। मेरे कहने का मतलब यह, बहुत बड़ी तवक्कोआत वाबस्ता ना करें। हां, जुज़ी तौर पर 18-20 का फर्क पड़ जाएगा, 17-20 का शायद फर्क पड़ जाए, 15-20 का शायद फर्क पड़ जाए, लेकिन कोई बहुत जोहरी तब्दीली नहीं आनी जब तक हम उस सरमायादाराना निजाम का हिस्सा हैं। यह हमेशा हमारे जहन नशीन बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपको याद है इसी एजुकेशन के हवाले से, निसाब तालीम के हवाले से, यहां पर हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए जिन्होंने बड़ी जहमतें की, बड़े राबते किए निसाब तालीम के हवाले से जो मुसवदे बन गए थे। लेकिन बात उस वक्त भी ये चल रही थी कि ये फलान हुकूमत ये काम कर रही है। अगर थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में आप जाते तो समझ आ जाती कि भाई ये इन हुकूमतों के बस की बात नहीं है। चाहे आपका निसाब तालीम है, चाहे आपके कवानीन है, ये इन हुकूमतों के हाथ में नहीं है। इनको एजेंडा दिया जाता है और उस एजेंडे के तहत ये करने पर मजबूर है। यही निसाब तालीम जो इस वक्त मुतनाजा है, जिसमें हमारे बहुत सारे मसाइल मौजूद है, जिस पर एतराजात मौजूद है। अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये आज का मसला नहीं है, ये मुशर्रफ के आखिरी दौर से मसला शुरू हुआ और इनको एजेंडा दिया गया, उस वक्त से इस पर काम हो रहा है। हुकूमतें तब्दील होती रही लेकिन वो काम उसी तरह से आगे बढ़ता रहा और अब भी उस पूरे एजेंडे को तकमील तक पहुंचाने वाले वो सियासी हुकूमतें नहीं है बल्कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। क्यों? इसलिए कि वो मुस्तकिल है और हुकूमतें आनी जानी वाली है। इसलिए ये बात जहन में रखें कि चाहे निसाब तालीम का मसला हो, चाहे कानून साजियों का मसला हो, चाहे आपके तालीम के इदारों में मौजूद कल्चर का मसला हो, चाहे आपके रेडियो टीवी अखबारात और इनका मसला हो। अभी यही सिराजुल हसन मुझे बता रहे थे कि जब वो वजीर खजाना थे तो उनको, चूंकि वो वजीर खजाना थे तो बजट उन्होंने बनाया था, कहने लगे हमने बजट बनाया और उस बजट में वर्ल्ड बैंक ने हमें तकरीबन 90 करोड़ रुपए या 90 करोड़ डॉलर, ये मैं खुद भूल रहा हूं, देने का वादा किया। कहते हैं कि हमने उस बजट में उसको शामिल किया। उस जमाने में अगर आपको याद हो, केपीके के अंदर कुछ मुजाहरे हुए और ये जो बिल बोर्ड्स हैं जहां पर नंगी तस्वीरें होती हैं इश्तहारी, उनको साफ किया गया, उन पे कालक मला गया, इस तरह के बहुत सारे वाकयात वहां पर हुए थे। कहने लगे 9 महीने गुजर गए हमें पैसे नहीं मिले। हमने वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे से बात की, भाई आप हमें पैसा नहीं दे रहे, आपके वादे पर हमने उसको बजट में शामिल किया था। कहने लगे कि हम पैसा इसलिए तो नहीं देते कि आप जो है तरक्की करें, हम जब पैसा देते हैं तो हमारी शराइत होती है, उनमें से एक हमारा कल्चर भी है, तो आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है हमारे कल्चर को यहां पर रोकने के लिए, उसकी मौजूदगी में हम आपको कर्जा नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, और पैसे नहीं दिए गए। इसलिए ये याद रखें, तामीर वतन के लिए मुल्क के बच्चे बच्चे को तैयार करने की जरूरत है। मुश्किल हमारी यह है कि हमारी अहल सुन्नत बरादरी के अंदर भी, अहल सुन्नत के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा के अंदर भी अभी ये शऊर मौजूद नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसी निसाब तालीम के वाले से कई उलमा से मेरी बात हुई, जब मैं कहता हूं भाई इसके नतीजे में आपकी आइंदा आने वाली नस्ल देसी अंग्रेज बनकर निकलेगी, जहां पर आपके दीनी अकदार, दीनी वैल्यूज, आपके बच्चों की तरबियत में जो इस्लामी बुनियादी अनासर है उन अनासर को साफ किया जा रहा है। कहते हैं नहीं, हमें जिन चीजों से गरज है वो हमें मिल रही है, और वो क्या है? वो सहाबा का मसला, तो अहल बैत से झगड़े का मसला, तारीख के बाद चीजों का मसला, बस वो चीजें आ गई तो काफी है। जो असल रूह है उस रूह की तरफ कोई मुतवज्जे नहीं है और न मुतवज्जे होने के लिए तैयार है। ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस का मुकाबला बाहमी तौर पर ही हो सकता है, शऊर के नतीजे में ही हो सकता है, आगही पैदा करके ही हो सकता है। इस वक्त ये जो एक मूवमेंट चली है अमेरिका मुखालिफ, इससे हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस बात के की तरफ भी हमें मुतवज्जे होना चाहिए कि बरहनगी का, दीनी अकदार की पामाली का जो कल्चर साथ में परवान चढ़ रहा है हमारे इदारों में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे तालीमी मराकज में, हमारी मीडिया के अंदर, उन चीजों की तरफ भी हमारी तवज्जो भी हो और उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई मंसूबा, कोई सोच और कोई फिक्र भी मौजूद हो। इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।